शांति कैसे मिलती है? उत्तर, जिसके विक्षेपों का नाश हो गया हो। विक्षेप क्या होता है? बैठते ध्यान में नई नई बातें आती है, तो ध्यान में विक्षेप हो गया। और विक्षेप क्यों पैदा होते हैं? विक्षेप हमारी कामनाओं से पैदा होते हैं, हमारी इच्छाओं के कारण से विक्षेप पैदा होते हैं। लोग समझते हैं कि मन में चंचलता है, इस कारण से हमारे विक्षेप पैदा होते हैं, परंतु इच्छाओं के कारण से विक्षेप होता है, इधर ध्यान नहीं जाता। मन को रोकने का तो अभ्यास करते हैं, पर इच्छाओं के त्याग की तरफ विचार नहीं करते हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं का त्याग करो, किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करना, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करना। ऐसा होने से आपकी आत्मा ही महात्मा हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी देर में अपनी आत्मा से पूछते रहो कि क्या चाहते हो। कहेगी कुछ नहीं चाहते, ठीक। फिर कहो कि देखो अभी तो बोलते हो कुछ नहीं चाहते, लेकिन जब हम ध्यान में बैठेंगे तो कहोगे कि हमको ये चीज चाहिए, हमको वो चीज चाहिए, कि नहीं कहेंगे। ऐसे अपने मन में इच्छाओं का त्याग करो। ऐसे में यदि मृत्यु हो जाए तो बस सीधा कल्याण है। हम तो उल्टी बात बोलते हैं, आपको सुहाएगी नहीं। मृत्यु को निमंत्रण दो तो आएगी तो सही, आ जा, तू ही आ जा। फिर अपनी आत्मा से पूछो कि देखो मृत्यु को निमंत्रण दे रहा हूं, तुम्हारे जीने की इच्छा है कि नहीं? भले ही आओ, मेरे जीने की इच्छा क्यों होगी? मैं तो सदा ही रहती हूं, मैं मरती नहीं हूं, तो मेरे क्यों इच्छा हो? मृत्यु को तो निमंत्रण देवे। एक दिन मृत्यु तो होगी, लेकिन आप निमंत्रण दोगे तो आपके अंदर मृत्यु का डर निकल जाएगा, साहस आएगा। परमात्मा के ध्यान में मृत्यु हो जाए तो आनंद ही आनंद है। मृत्यु से भय इसीलिए लगता है कि अभी हमने करने योग्य काम नहीं किया। मन में जोश रखो, भगवान ने कृपा करके हमको यहां तक पहुंचा दिया है, तो अब क्या कृपा की सीमा है कि अब कृपा खत्म हो गई? भगवान असीम है, भगवान की कृपा भी असीम है। इसलिए भगवान की कृपा रखो, कृपा का बल रखो और भगवान का ध्यान लगाओ, कोई कठिनता नहीं है। भगवान की कृपा देख देख कर मस्त रहो। क्यों हो, 84 लाख योनियों में से निकाल करके भगवान ने दया करके मानव शरीर दिया है। मानव शरीर भी हमको भारतवर्ष में दिया है, और अच्छे कुल और संस्कृति में जन्म दिया है, वैदिक सनातन धर्म में जन्म दिया है। ये धर्म तो सबका आदि है। भारतवर्ष में तो जिधर जाओ उधर मंदिर है, तीर्थ है, संतों के स्थान है, और फिर इस कलयुग में यहां तो थोड़े से एक साधन से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, और फिर भगवान की चर्चा करने का मौका मिल गया। ये सब परमात्मा की कृपा है। गंगा के तट पर जो भजन साधन किया जाता है वो ज्यादा महत्व का होता है। यहां के दृश्य को याद करो, घर में जाओ तब तो वैराग्य की लहरें उठने लगे। कैसा स्वाभाविक सात्विक वातावरण है। गंगा के दर्शन से अंतःकरण शुद्ध सात्विक होता है। फिर गंगा जल पिए, गंगा जल में स्नान करें, गंगा जी के दर्शनों से पवित्र हो जाते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवद गीता किंचिद अधीता, गंगा जल लव कणिका पीता। भगवद गीता का किंचित मात्र भी अध्ययन करता है, गंगा जी के जल का लव मात्र भी पान करता है, यमराज जी उसकी चर्चा नहीं कर सकते, ले जाने की बात तो बहुत दूर है, आत्मा पवित्र हो जाती है। हमारे यहाँ परिपाटी है, जब मनुष्य मरने लगता है उस समय गीता जी सुनाई जाती है, तुलसी जी का और गंगा जल का पान कराया जाता है। इस भागीरथी गंगा के तट पर हम लोग उपस्थित होते हैं, ये गंगा की और भगवान की कृपा है। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सभी की कृपा होती है। हम लोगों को वैराग्य पूर्वक ध्यान करना चाहिए। जब आनंद की घोषणा होती है तब उस समय अलौकिक शांति प्राप्त होती है। अपार आनंद, असीम आनंद, अक्षर आनंद, निरतिशय आनंद, सद आनंद, चिदानंद, आनंद आनंद, ये जो आनंद का उद्घोष होता है, अलौकिक शांति मिलती है। हम क्या समझ करके आनंद बोलेंगे, भगवान की कृपा हमारे पर। ध्यान के पूर्व में वृत्तियां शांत हो जाती हैं आनंद की घोषणा करने पर। एक बार आपका उस आनंद में मन डूब जाएगा फिर शांति की बाढ़ आएगी। परमात्मा का जो चिन्मय स्वरूप है उसका प्रादुर्भाव हो जाता है, अलौकिक शांति मिलती है। इसके पूर्व आपको गीता जी का सिद्धांत बताया जाता है। गीता जी का सिद्धांत वास्तव में केवल भगवान जानते हैं। गीता ज्ञान और भक्ति का अगाध सागर है, अथाह है, उसमें डुबकी लगाता है वह उस समय गीतामय हो जाता है। गीता रूपी जो गंगा है वो अपने आत्मा के कल्याण के लिए है। इस गीता रूपी गंगा के एक श्लोक को धारण करें तो कल्याण हो जाए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए गीता जी का एक श्लोक बहुत है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचाल्यते। जिसको प्राप्त करने के बाद और प्राप्त करने की इच्छा ही न हो और महान दुख से भी जो दुखी न हो, विचलित न हो, ये गीता का सिद्धांत है। इससे अपने जीवन को टटोलते रहना चाहिए कि हमारा जीवन ऐसा बना कि नहीं बना। यदि नहीं बना तो बनाना चाहिए, और बन गया तो ठीक बात है। मुक्ति से भी ज्यादा कोई लाभ मिल सकता है क्या? हाँ, मुक्ति से भी ज्यादा लाभ मिलता है। मुक्ति से ज्यादा क्या लाभ होता होगा? उत्तर, जब तक संसार में एक भी जीव है तब तक हम लोग मुक्ति से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। अपने आप का उद्धार कर लिया, ये तो एक अध्याय पूरा हुआ है, अभी इसके आगे और है। अभी हमारी उन्नति का अंत नहीं हुआ है, तो फिर ये कहां तक उन्नति करे कि सबका कल्याण हो जाए। अच्छी भावना का बुरा फल तो होता ही नहीं, इसलिए अच्छी से अच्छी भावना करो कि सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान की भावना की तो कोई बुरा फल हुआ? नहीं हुआ। भोग बुद्धि पतन करने वाली चीज है, ईश्वर बुद्धि नहीं। भोग बुद्धि पतन करने वाली चीज है। प्रहलाद जी ने खंभे में भगवान को प्रकट कर लिया तो भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद जी ने खंभे में भगवान की भावना की, इसलिए भगवान प्रकट हो गए। असल में प्रहलाद जी ने भगवान को खंभे में से प्रकट होने की बात नहीं कही थी कि आप खंभे में से प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि इस खंभे में क्यों नहीं दिखता है, तो प्रहलाद जी कहते हैं सब में है वो, तो खंभे में भी है, सब जगह है। जब भगवान को सब जगह बताकर खंभे में हां भर दी प्रहलाद जी ने, तो भगवान प्रकट हो गई। भावना का फल है। परमात्मा की प्राप्ति कराने की अपने में शक्ति नहीं होते हुए भी, कहीं परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए भगवान निमित्त बना दे तो ना नहीं करना चाहिए कि नहीं महाराज हम ऐसा नहीं करते। भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन। जो आदमी ये समझता है कि मेरे में कल्याण करने की शक्ति नहीं है, मैं किसका कल्याण करूं बाबा, मैं तो कल्याण नहीं कर सकता, एक तो वो आदमी। और जो ये अभिमान रखता है कि मैं दूसरों को प्राप्ति करा सकता हूं, एक वो आदमी। उनमें जो अभिमान रखने वाला है वो तो बिल्कुल नहीं करा सकता। जो ये समझता है कि मैं प्राप्ति नहीं करा सकता, अगर दूसरा आदमी उस पर आरोपण करता है कि यह परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है, तो इस प्रकार निमित्त मात्र उसे बना लेने, तो बना लो, उसमें हर्जा नहीं है। माने कोई अपने को निमित्त बना ले कि भाई ये परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं, तो निमित्त बन जाओ। अंदर ये बात समझो कि मुझे केवल निमित्त ही बनना है। भगवान अपने को इसलिए निमित्त बना रहे हैं कि दूसरों को अपनी प्राप्ति के लिए तुम मना मत करो, और तुम भी लगो और दूसरों को भी लगाओ। दूसरी बात है, भगवान अपने को निमित्त नहीं भी बनाए तो भी इस काम में अपने निमित्त लग जाना चाहिए कि सबकी उन्नति हो, सबकी उन्नति हो, इस काम में लग जाओ। और ये मानना चाहिए कि हमारे अंदर सबके उन्नति करने का भाव आया है तो ये भगवान ने ही निमित्त बनाया है। भगवान कहे, अरे भाई मैंने तुमको ये पदवी दी नहीं, मैंने तुमको निमित्त बनाया ही नहीं, तो फिर तू क्यों अपने को निमित्त मानता है? तो वापिस निवेदन कर लो कि महाराज आपने तो मुझे पदवी नहीं दी, पर हमने तो आपसे जैसे बच्चा माँ से कुछ छीन लेता है ऐसे हमने आपसे जबरदस्ती छीन ली। जैसे कोई आदमी मरने वाला हो, वह अपने को निमित्त बनाकर भजन ध्यान सुनना चाहे या वह न बुलावे, तो अपने चलकर कहो कि कीर्तन सुनावे क्या, गीता जी सुनावे क्या, वह कहे कि सुनाओ, तो उस जगह निमित्त बन जाओ और उसको गीता कीर्तन सुनाओ, क्योंकि वो संसार से जा रहा है। इस प्रकार की पांच चार जगह ऐसी है, और एक आदमी की भी मुक्ति हो गई तो अपना तो जीवन सफल हो गया। मनुष्य का जीवन तो कल्याण करने के लिए मिला है, आपने अपना नहीं किया तो दूसरों का कर दिया, तो कोई बात नहीं, अपने को धोखा नहीं मानना चाहिए कि अपना कल्याण नहीं हुआ, ऐसा धोखा नहीं मानना चाहिए। कोई कहे कि आप में कल्याण करने की शक्ति है तो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए, कोई दूसरा कहे ना तो स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई पूछे आपसे कि क्या ईश्वर की प्राप्ति करा सकते हो, तो साफ कह देना चाहिए मेरे में सामर्थ्य नहीं है, ईश्वर की कृपा से ही होगा। कोई पूछे कि परमात्मा की प्राप्ति का पात्र किस तरह बनूं, तब वहां खुले कह दो कि परमात्मा की शरण हो जाओ। कोई पूछे कि शरण कैसे होवे, तो भी कह दो कि ऐसे ऐसे शरण हो, उनका नाम ले, उनका कीर्तन ले, उनका प्रभाव देखो, अपने पर भगवान की कृपा देखो, अपने पर भगवान ने कितना कितना एहसान किया है, ऐसे ऐसे समझो। ये निमित्त बनना है, अपनी शक्ति मत लगाओ। वह कहे हमें तो आपने ही परमात्मा की प्राप्ति करा दी, तो ऐसी बात कहता रहो उस पर ध्यान ही मत दो, हम कौन होते कराने वाले। एक आदमी गाली देता है और एक आदमी प्रशंसा करता है, दोनों की मत सुनो, तब आगे बढ़ पाओगे। दीन दुखी अनाथ आदि की सेवा करना बहुत ऊंचा काम है, और मरते हुए को भगवान का नाम सुनाना और भी ऊंचा काम है, और गीता का प्रचार करना सबसे ऊंचा काम है। नच तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम है भविता नच में तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। दिन में चार घंटा मौन रखो, मौन रखने से आप में बड़ी भारी साधन की शक्ति बढ़ेगी। लोगों से संपर्क मत करो, ज्यादा इशारों से बात करने में भी मौन कमजोर पड़ता है। मौन रहे अंदर से भी बाहर से भी, जिसके विशेष अनुकूल पड़े उसके लिए बात कहते हैं। मौन रखो, रात को सोने के समय को सावधान साधन बनाना चाहिए। रात को सोते समय भगवान के नाम का जप, ध्यान या किसी लीला का चिंतन करते करते सो जाओ, नींद आ जाए, बस वो नींद है, वो भगवान का भजन है। अपने साधन को हर समय बढ़ाते रहो। बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। हर घंटे इसका निरीक्षण करें कि भाई पिछले घंटे से जो साधन बढ़ा अभी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, देखो खोज करो। एक घंटा पहले हमारा जो साधन था उस साधन से बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो खोजना चाहिए क्या बात है। जैसे बढ़िए की दुकान में बढ़िए को घाटा लगता है तो वो सोचता है कि पिछली साल से बढ़कर मुझे मुनाफा होना चाहिए था, ये घाटा कैसे लग गया। इस प्रकार से देखना चाहिए क्या हो गया, साधन बढ़ा क्यों नहीं। मेरा भक्त यज्ञ और तपों का भोक्ता मुझको जानकर सुहृद मानकर मुझको प्राप्त हो जाता है। एक तरफ आपका नित्यनेम का समय है और दूसरी तरफ आपके घर में कोई बीमार है, उसको सेवा की जरूरत है, तो आप नित्यनेम वगैरह सब छोड़कर उसकी खूब तन मन धन से सेवा करो। ऐसा मत समझो कि अभी हमारा नित्यनेम का समय है, जाओ उसकी सेवा करो, उसको भगवान का स्वरूप समझ के सेवा करो। या ये समझो कि भगवान मुझसे सेवा लेने के लिए ये बीमार बने हैं, इनको बीमारी दी है, भगवान स्वयं ही बीमार बनकर आए हैं, ऐसा समझना चाहिए। जो आदमी निष्काम भाव से दूसरों के उपकार के लिए सेवा करता है उसको किसी का भी डर नहीं है। हम तो कहते हैं जैसे हेजा है, प्लेग है, टीबी है, ये छूत की बीमारियां हैं, परंतु निष्काम भाव से भगवत भाव से उस बीमार की निदड़क सेवा करो। उस सेवा करने वाले को कोई डर नहीं रखना चाहिए, कोई खतरा नहीं होगा। हमने तो बहुत उत्साह से ऐसा काम किया है, हैजा प्लेग टीबी वालों को हमने सेवा प्रदान की, हमारे तो कुछ नहीं हुआ, आपके सामने स्वस्थ बैठे हैं। सेठ जी बोलते हैं निष्काम भाव से जो काम किया जाता है वो मामूली होता है, उससे बीमारी फैलती है संभव ही नहीं। आपको रहस्य की बात बताते हैं, गीता जी में प्रवेश करके देखो, एक एक चरण में रहस्य की बातें हैं। धारण हो जाए तो कहना ही क्या है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। तू कर्मों के फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। चारों बातें बड़ी महत्व की है, इसको धारण करने से बहुत जल्दी उद्धार होता है। लोग देखते हैं कि जिस कर्म से हमें फल की फल के फल जिस कर्म से हमको फल न मिले या फल पर अधिकार ही नहीं करें, वो कर्म ही क्यों करें। नहीं, कर्म करने में तेरा अधिकार है, तू आया ही कर्म करने के लिए है। ये मानव जीवन फल भोगने के लिए थोड़े ही आया है, इसलिए कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। फल देना तो परमात्मा के अधिकार की चीज है। अधिकार माने मेरा हक नहीं है, फल में मेरा हक नहीं है। यदि आप अपना हक मानेंगे तो उस कर्म का जितना हक होगा उतना ही मिलेगा, और हक नहीं मानेंगे तो आपको असीम फल मिलेगा, असीम मिलेगा। राम की दृष्टि से 14 बरस तक राज्य पर मेरा अधिकार नहीं है, ऐसा भाव था। भरत कहता है कि मेरा अधिकार नहीं है, वहां दोनों के त्याग की प्रशंसा होती है। इन दोनों के त्याग भरे व्यवहार को देखने के लिए वशिष्ठ आदि ऋषि, जनक जी महाराज जैसे परम ज्ञानी पहुंचते हैं उन दोनों से मिलने के लिए। वशिष्ठ जी तो गुरु थे, राम जी को ज्ञान दिया, उनको चित्रकूट जाने की क्या जरूरत थी, जनक जी को चित्रकूट जाने की क्या जरूरत थी, पर तो राम का क्या व्यवहार होगा, भरत राम के प्रति क्या व्यवहार करेंगे। भगवान और भक्त का व्यवहार देखने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी उपस्थित हुए, ये निष्काम भाव की महिमा है। भरत जी ने राम जी का आदेश समझ करके राज्य का काम किया, पर उसका उपभोग नहीं किया। संसार में हम आपको काम कैसे करना चाहिए इसकी एक तरकीब बताते हैं। जैसे आपने किसी ब्राह्मण को गाय दे दी, वो गाय भूली भटकी वापिस आपके घर पर आ गई, तो आप उसको चारा डाल दोगे, उसको सहला दोगे, सेवा कर दोगे, पर उसका दूध नहीं पियोगे। ऐसे ही निष्काम भाव से संसार में लोगों की सेवा कर दो, परंतु उनसे लेने की इच्छा मत रखो। कितना अच्छा उदाहरण दिया है, कर्म करने में अपना अधिकार है, फल में नहीं है। ब्राह्मण की गाय को चारा डालो, सेवा करो, उसको फुसलाओ, इसमें तो आपका अधिकार है, पर ऐसा नहीं कि हमने इसको चारा खिलाया तो हम इसको दूध लें। ऐसे ही संसार में रहो, कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। कोई भी उत्तम कर्म किया जाए अच्छी तरह से करो, फल की इच्छा नहीं रख करके करोगे, फल पर अधिकार नहीं समझोगे, यही कर्म को अच्छे करने का तरीका है। कर्म का हेतु भी मत बन, हेतु मत बन। अगर तू कर्म फल का हेतु बन जाएगा तो तुमको भोगना पड़ेगा, मुक्ति नहीं होगी। कर्म फल का हेतु माने ये कर्म फल है, ये मैंने इसको बनाया है, मैंने ऐसा किया है, ये मत बन। या कोई भवन बनाएंगे उस पर अपना नेम प्लेट पहले देंगे ताकि लोग मरने के बाद भी हमको याद रखे। जरा विचार करो कि इस पुण्य को आपने नाम से कमा लिया, पर आपको क्या मिला। यदि आप निष्काम भाव से करते तो आपको निष्काम भाव मिलता, अब क्या मिला, आप तो मर जाओगे, बड़ाई आपके नाम की होती रहेगी, आपको क्या मिला। भगवत अर्थ कर्म कर सकते हो, ये भगवान के लिए हमने अर्पण कर दिया। फल की तरफ दृष्टि न रख करके कर्म करने में अरुचि भी मत रखो कि भाई हमको फल नहीं है तो कर्म क्यों करें, नहीं, कर्म करना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार से संसार में कर्म करना चाहिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण